दक्षिण में लक्ष्मण हैं, और उनके दक्षिण में लक्ष्मण हैं, उनके दाएं हाथ में वामे च जनकात्मजा सीता माता है, पूरतः उनके सामने मारुति बैठे हुए हैं, और ऐसे श्री रामचंद्र भगवान जो कि रघुनंदन हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, वामे च जनकात्मजा पूरतो मारुतिर्यस्य, पूरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, वामे च जनकात्मजा पूरतो मारुतिर्यस्य, पूरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्, वन्दे रघुनन्दनम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, वामे च जनकात्मजा पूरतो मारुतिर्यस्य, पूरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्, वन्दे रघुनन्दनम्। मुखं करोति वाचालम्, करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घायते गिरिम्, लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे, कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं, गुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवम्, आनन्दमाधवम् श्रीचैतन्यमीश्वरम्, चैतन्यमीश्वरम्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार, द्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, सादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका के रविवार के इस सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। तो परसों से हमने प्रभु श्री रामचंद्र के और उनके पार्षदों के लीला पर चर्चा शुरू की थी। तो परसों हमने प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में चर्चा की, परसों शाम को। कल सुबह हमने लक्ष्मण जी के बारे में चर्चा की, आज सुबह सीता माता के बारे में, और आज हम हनुमान जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो परसों शाम को जो प्रवचन हुआ था उसमें आप में से कितने भक्त उपस्थित थे? ओके, वेरी फ्यू। ओके, सो फॉर दोज हु आर प्रेजेंट आई विल रिपीट अ फ्यू थिंग्स, सो काइंडली बियर विद मी। रामायण में वर्णन आता है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। ऐसे बताया गया रामायण में कि प्रभु श्री रामचंद्र का जो चरित्र है वो शतकोटि प्रविस्तरम, कोटि कोटि श्लोक उस पर लिखे गए हैं। न केवल वाल्मीकि का रामायण है, उसके बाद तुलसीदास ने लिखा है, और अनेक महान संतों ने प्रभु श्री रामचंद्र का गुणगान किया है। तो शतकोटि प्रविस्तरम पर कोटि कोटि से श्लोक है, पर हरेक श्लोक के एक एक अक्षर की वो क्षमता है, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, बड़े बड़े पापों का वो नाश कर सकती है। तो ये ऐसे क्यों है कि किसी एक व्यक्ति की कहानी सुनने से हमारे पापों का नाश हो सकता है? ये व्यक्ति में क्या विशेषता है? तो राम इस शब्द का अर्थ पद्म पुराण में बताया गया है, रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्माभिधीयते। कि योगी जिनमें रमण करते हैं, अनंत रूप से, रमंते योगिनो अनंते, सत्यानंद चिदात्मनि, सत्यानंद अनुभव करते हैं। इस दुनिया का जो आनंद है वो मिथ्यानंद है, सत्यानंद चिदात्मनि। तो जिस परम सत्य में अनंत रूप में वो रमण करते हैं, तो उस रमण के कारण उस परम सत्य का नाम है राम। तो राम न केवल एक व्यक्ति का नाम है जो लाखों साल पहले ऐतिहासिक लोग के हिस्टोरियंस ऐतिहासिक लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी पर शायद आए थे, पर राम जो है वो उस परम सत्य का नाम है जो अनंत आनंद के स्रोत है। और वह परम सत्य कोई ज्योति न होकर एक आनंदमय व्यक्ति है, और वह इस भौतिक जगत में बार बार आते हैं। जैसे हम इस भौतिक जगत में हमेशा किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जिसमें कोई अद्भुत गुण है। अगर कोई स्पोर्ट्स स्टार है, कोई मूवी स्टार है, तो वो कुछ अद्भुत कार्य जब करता है तो उससे हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये आकर्षण क्यों है? कई बार जो मूवीज में दिखाते हैं, पिक्चर्स में दिखाते हैं, उस प्रकार का कार्य करना किसी वास्तविक व्यक्ति के लिए नामुमकिन है। एक व्यक्ति 10-20 व्यक्तियों से लड़ रहा है और सब और गोलियां लग रही, पर उसको एक भी गोली नहीं लगती। तो यद्यपि ये नामुमकिन है वास्तविक जीवन में, फिर भी ये इतना लोकप्रिय है। क्यों लोकप्रिय है? क्योंकि ये सब सुपर नेचुरल है, ये अलौकिक है। बट अट्रैक्शन टू द सुपर नेचुरल इज नेचुरल फॉर अस। अलौकिक चीज़ों के लिए, अलौकिक व्यक्तियों के लिए आकर्षण, ये वास्तव में हमारे लिए स्वाभाविक है, नेचुरल है। क्योंकि यह हमारे जो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं उनके प्रति आकर्षण का एक विकृत रूप है, वो मिसडायरेक्शन है। वास्तव में अगर हम रामायण या महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें जो भी आजकल लोग पिक्चर्स में मूवीज में देखने चाहते हैं उसका और उससे बढ़कर चीज़ें हैं। उसमें एक्शन है, वायलेंस है, एडवेंचर है, रोमांस है, सस्पेंस है, जो भी मूवीज़ में होता है वो सब भगवान की लीलाओं में है। पर ये फ़र्क क्या है? भगवान की लीला ये वास्तविक सत्य है, और ये जो मूवीज़ पे दिखाते हैं वो एक मिथ्या है, वो एक भ्रम है। तो ये जो भ्रम है उसकी शक्ति इतनी है कि जब लोग कोई पिक्चर देखना चाहते हैं जाते हैं, तो वास्तव में उस पिक्चर में हमें जो दिख रहा है वो केवल हम दो इंद्रियों से अनुभव करते हैं, आँखों से देखते हैं और कान से सुनते हैं। पर केवल दो इंद्रियों से वो भ्रम इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिमान होता है कि हमें पूर्णतया वो उसमें जकड़ लेता है। जब लोग मूवी देखते हैं तो उस हंसते हैं, रोते हैं, जब वो हीरो विलन को पीट रहा है तो वो भी यहाँ पीटो, और जब वो विलन हीरो को पीटता है तो डर जाते हैं। तो वास्तव में अगर उसी मूवी थिएटर में कोई वॉचमैन होगा और उसने बहुत बार वो मूवी देख लिया तो बोर हो गया है वो, तो वो मूवी नहीं देख रहा है, वो लोगों को देख रहा है। तो वो लोग, हर एक व्यक्ति अपने अपने चेयर पे बैठा है और वास्तव में उसके बाजू में कुछ हो ही नहीं रहा है, और उसको लगा कितना ये बेवकूफी है, क्या भ्रम चल रहा है वास्तव में। क्यों? क्योंकि वो उस मोह की ओर नहीं देख रहा है। पर जो उस मोह में फंस गया है, केवल दो इंद्रियों से फंसा है, पर वो इतना फंस गया है कि एक भ्रम के जीवन में चला जाता है। और ये भ्रम का जीवन इतना आकर्षक होता है कि अगर वो मूवी चल रहा है, पिक्चर चल रहा है, उसके बीच में कोई लाइट लगा देता है, ए बंद करो लाइट, बंद करो, लोग बोलते हैं कि लोग मोह में ही रहना चाहते हैं, वो उस मोह से बाहर आना नहीं चाहते। और आजकल अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो पहले एक थिएटर था, अभी मल्टी थिएटर है। मल्टी थिएटर मतलब क्या? एक मूवी से आप दूसरी मूवी में चले जाओ, एक भ्रम से दूसरे भ्रम में चले जाओ। भ्रम से कभी बाहर मत आओ। पर यह भ्रम का आकर्षण क्यों है? क्योंकि वास्तव में हम सब आध्यात्मिक जगत में थे, हम शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं। और आध्यात्मिक जगत में भगवान इसी प्रकार के नहीं, वास्तव में इससे बढ़कर और आकर्षक रोमांचक लीलाएं करते हैं, क्योंकि हम वो भगवान को भूल गए हैं, तो फिर वही आकर्षण है, तो वह आकर्षण इस जगत के किसी व्यक्ति पर या इस जगत के किसी मोह की ओर लग जाता है। तो ये जो भौतिक जगत है, शास्त्र ने बताया कि है ये वास्तव में एक मोह है। जब जीवात्मा भगवान को भूलकर इस भौतिक जगत में वो सोचता है कि मैं खुद भोग करूंगा, तो फिर भगवान उनके माया शक्ति के द्वारा ये भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। तो ये भौतिक जगत एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कल्पना कर सकते हैं कि मैं भगवान के विरह अलावा इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से भोग कर सकता हूँ, मैं स्वामी बन सकता हूँ, मैं आनंद ले सकता हूँ। जैसे कि जब लोग मूवी देख रहे होते हैं, पिक्चर देख रहे होते हैं, तो उसमें वो जो हीरो होता है वो हीरोज के साथ वो खुद को पहचानते हैं, और इसीलिए जो हीरो अगर यशस्वी होता है तो आनंदित होते हैं, और हीरो अगर उसको उसकी पिटाई होती है तो वो दुखी हो जाते हैं। जब हीरो हीरोइन के साथ होता है तो सिटियां मारते हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि वो हीरो के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो वास्तव में ये भौतिक जगत है, ये माया देवी ने बनाया हुआ एक मोह है। श्री प्रभुपाद की इच्छा थी कि जो वैदिक ज्ञान है वो वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक रूप से भी उसका प्रचार हो। तो प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य थे जो अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उन्हें PhD किया था, तो उन्होंने एक बहुत ही विख्यात बुक लिखा है, वो वैज्ञानिक बुक है, उसका नाम है माया, माया द वर्ल्ड एज अ वर्चुअल रियलिटी। द वर्ल्ड, ये दुनिया, जीवन जो है ये क्या है? वर्चुअल रियलिटी। इनको कंप्यूटर थोड़ा पता है, कंप्यूटर में एक भ्रामक सत्य तैयार किया जा सकता है। तो जो टेलीविजन में सत्य होता है, दिखता है, जो मिथ्या होता है वो केवल दो इंद्रियों से हमें प्रभाव करता है, पर जो माया देवी का भ्रम है वो सभी इंद्रियों से हमें प्रभाव करता है। तो अगर एक व्यक्ति टेलीविजन देखने में पूरा लगा हुआ है, और अगर कोई उस मूवी देखने में पूरा लगा है और कोई इसको रोकना चाहता है, अरे बस हो गया, तो वो उसमें इतना डूबा हुआ है कि उसका ध्यान ही नहीं है कहीं और। इसमें बता रहा था, वो कंपाउंडर देख रहा है क्या चल रहा है, ये वो वेटर वॉचमैन देख रहा है क्या चल रहा है, तो उसका जो ध्यान है उसको बाहर कैसे निकाले। तो हम इस शरीर में आत्मा के रूप में बैठे हुए हैं, और आत्मा के बाजू में परमात्मा है। तो वो आत्मा जो है वो ये माया का शो देख रहा है, और परमात्मा हमारा शो देख रहे हैं। परमात्मा हमें देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, और परमात्मा हमारे बाजू में है, बट वी हैव बिकम डेफ एंड ब्लाइंड टू हिज प्रेजेंस। भगवान हमसे बोलते हैं पर हम सुन नहीं पाते हैं, भगवान हमारे बाजू में है पर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो उपनिषदों में उदाहरण आता है कि दो पंछी एक पेड़ में बैठे हुए, समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशय शोचति मुह्यमानः जुस्तम यदा पश्यत्यन्यमीशम अस्य महिमानाम इति वितशोकः। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो, एक वृक्ष पे दो पंछी बैठे हुए, उनमें से एक पंछी जो है वो सब फल खा रहा है, और कभी पके हुए फल है, कभी खट्टे फल है, कभी सड़े फल है। वास्तव में लोग कहते हैं कभी खुशी कभी गम, पर ये दुनिया में क्या होता है, ज़्यादा करके गम होता है और बीच में कभी कभी खुशी होती है। और जब दुख आता है तो लोग कहते हैं वास्तव में ये दुख है, यह हमारे सुख को और आनंददायक बनाता है, अगर दुख नहीं होगा तो सुख का आनंद कैसे आएगा। पर वास्तव में ये भ्रामक तर्क है। मान लीजिए अगर कोई बिजनेसमैन है, पिछले 6 साल से उसके बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जाके प्रार्थना करेगा, हे भगवान 6 साल से भी प्रॉफिट हो रहा है, मुझे प्रॉफिट का आनंद नहीं मिल रहा है, 1 साल मेरा भी फैक्ट्री जला दो आप। तो पूरा लॉस हो जाएगा, पूरा नुकसान हो जाएगा, और फिर अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो फिर प्रॉफिट का ज्यादा आनंद आएगा। नहीं, कोई ऐसे प्रार्थना नहीं करेगा। कोई विद्यार्थी है, भगवान पिछले 10 साल से मैं एक भी फेल नहीं हुआ हूं, कुछ मजा नहीं आ रहा, एक बार फेल कर दो मुझे। कोई ऐसी प्रार्थना नहीं करता है। मतलब वास्तव में दुख ये सुख के अनुभव के लिए जरूरी नहीं है, दुख हम पर जबरदस्ती लादा जाता है, और वो दुख को सहन करने के लिए हम कहते कभी खुशी कभी गम। पर वास्तव में एक ऐसा जगत है, आध्यात्मिक जगत है, जहाँ के हम वासी हैं पहले से, वहाँ पे केवल खुशी ही खुशी है, कोई गम नहीं है। तो ये जो इस जगत के दुख है वो वास्तव में हमें उस आध्यात्मिक जगत की याद दिलाते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर में कोई कीटाणु आ जाते हैं तो फिर हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो इट्स नॉट कम्फर्टेबल, वो अच्छा नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता है। पर जब वो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमें समझता है कुछ गलत है शरीर में, तो फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ये बीमारी है, दवाई लो, आप ठीक हो जाओगे। तो ठीक उसी तरह से इस दुनिया का जो दुख है वो क्या करते, जब हमारे जीवन में दुख बढ़ जाते हैं तो हमें एक आध्यात्मिक डॉक्टर, एक गुरु के पास जाना चाहिए। क्यों दुख है? और फिर वो गुरु है हमें आध्यात्मिक दवाई देते हैं, हरिनाम देते हैं, हरी कथा देते हैं, जिससे फिर क्या होता है, हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। तो द मिजरी इज मेंट टू रिमाइंड अस ऑफ आवर इनकम्पैटिबल सिचुएशन इन द मटीरियल वर्ल्ड। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो दुख है इस जगत के वो क्या दिखाना चाहते हैं कि आप इस जगत के वासी नहीं हो, ये जगत छोड़ो और भगवत धाम चले जाओ। पर हम हमारा ये तत्व ज्ञान बना देते हैं कि कभी खुशी कभी गम, और फिर उससे जो भगवान हमें सीख सिखाना चाहते हैं इस दुनिया के स्वभाव से वो हम सीख नहीं पाते हैं। पर जब देखते हैं भगवान कि हम इस माया के जंजाल में इतने फंसे हुए हैं कि निकलने की कोई इच्छा ही नहीं है, तो भगवान की करुणा भी अतुलनीय है। तो व्यक्ति मूवी देख रहा है और उसमें से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, उसको हिलाओ, उसको बुलाओ, उसको कुछ भी करो, वो नहीं हो रहा निकल, तो फिर भगवान क्या करते हैं, वो उस मूवी के अंदर प्रवेश कर लेते हैं, मूवी के अंदर प्रवेश कर लेते हैं और वहां पे आश्चर्यजनक कार्य करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आश्चर्यजनक कार्य ही देखने हैं, तुमको हीरोइज्म ही देखना है, तो फिर मेरा हीरोइज्म देखो। किसी क्षणिक हीरो के हीरोइज्म से क्या होने वाला है। पर ये हमारी शिक्षण पद्धति का ये दोष है, त्रुटि है, कि जब भगवान कोई लीला करते हैं तो हम उसको कहते हैं काल्पनिक है, माइथोलॉजिकल है, ये कैसे संभव है? जब भगवान एक आधे मानव आधे सिंह के रूप में आते हैं, नरसिंह रूप में आते हैं, तो हम कहते हैं ये काल्पनिक है, ये कैसे संभव है? और जब हमारे टेलीविजन मूवी प्रोड्यूसर्स एक आधा मानव और एक आधा स्पाइडर लाते हैं तो हम कहते हैं स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो क्या है ये, जो स्वाभाविक आकर्षण है उसको हम काल्पनिक कह रहे हैं और जो काल्पनिक चीज है उसको हम स्वाभाविक कह रहे हैं। तो दिस इज द मिसडायरेक्शन ऑफ लव। तो लोग गोविंद भगवान की लीला नहीं सुनना चाहते हैं, एक गोविंदा फिल्म एक्टर का फिल्म देखना चाहते हैं। ये मिसडायरेक्शन है। तो मैंने एक लेख लिखा था तो उसमें लिखा था, वी फॉरगेट द पर्सन हु नेवर फॉरगेट्स अस एंड वी रिमेंबर द पीपल हु नेवर रिमेंबर अस। हम वो व्यक्ति जो हमें कभी नहीं भूलते हैं, भगवान चक्षुर यस्य नरिष्यति, भगवान हरेक जीवात्मा उनका संतान है, उसके संरक्षण के लिए इतने चौकन्ने रहते हैं कि उनकी पलक भी नहीं झपकती है, चक्षुर यस्य नरिष्यति। तो वैसे भगवान जो कभी हमें नहीं भूलते हैं हम उनको भूल जाते हैं। और ये जो काल्पनिक कैरेक्टर्स है, स्पाइडरमैन, बैटमैन, वो उनमें तो क्षमता ही नहीं हमें याद करने, क्योंकि वो खुद काल्पनिक है। पर भले ही कोई स्पोर्ट्स स्टार्स है, कोई मूवी स्टार्स है, वो जानते भी नहीं हम अस्तित्व में हैं, भले ही जानते हैं वो अस्तित्व हम अस्तित्व में है, वो हमारी परवाह नहीं करते, और भले ही परवाह करते हैं वो कुछ हमारे लिए मदद नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी उनकी ओर हम आकर्षित होते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। पर इसीलिए भगवान इस भौतिक जगत में लीला करने आते हैं और वह है भगवान का अवतार। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरी लीलाओं को समझते हो, मेरी लीलाओं की ओर आकर्षित होते हो, तो फिर क्या होगा, भगवान ये भ्रम नहीं है, इस भ्रम में परम सत्य भगवान प्रकट हुए, तो भगवान की ओर आकर्षित हो गए, तो जो भगवान हमें अवतार के रूप में हम उनके बारे में श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, वही भगवान हमारे हृदय में भी है, और फिर हम उनके प्रति सचेत हो जाएंगे। जब उनके प्रति सचेत हो जाएंगे, उनके प्रति आकर्षित हो जाएंगे, उनके प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा, तो फिर सारा भवबंधन चला जाएगा। इसीलिए जो पहले बता रहा था श्लोक, महापातक नाशनम, कैसे भगवान के लीलाओं के श्रवण से बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि उनकी लीलाओं के श्रवण से हम मोह से आकर्षण जो है वो खत्म हो जाता है, हम भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और फिर भगवान की कोई इच्छा नहीं है कि हमें हम पाप करें या हमें पापों का फल मिले, भगवान की इच्छा है तो हम शुद्ध बन जाए और शुद्ध आनंद का अनुभव करें, और इसीलिए वो इस भौतिक जगत में आते हैं। इसीलिए भगवद्गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म के लिए जो लीलाएं है वो दिव्य है, और अगर कोई इनको तत्वतः समझता है, वास्तव रूप में समझता है, तो फिर वह इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता है। तो यह है वास्तव में भगवान की लीला है। तो ये तो जब भक्त हमारे जीवन में आते हैं और भक्त हमें बोलते हैं कृपया कार्यक्रम के लिए आओ, ग्रंथ पढ़ो, जप करो, तो वो क्या है, वो मूवी में लाइट चालू करने के समान है। तो अधिकांश लोग बोलते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, पर वास्तव में हमें सब कुछ चीज़ों के लिए समय है, सिर्फ भगवान के लिए समय नहीं है। टेलीविजन देखने के समय है, क्रिकेट मैच के लिए समय है, गपशप करने के लिए समय है, पर भगवान के लिए समय नहीं है। वास्तव में समय नहीं है का मतलब क्या है, महत्व पता नहीं है, सिंपली दैट्स व्हाट इट मींस, कि हमें महत्व पता नहीं है। और महत्व समझेगा तो हम जरूर समय निकालेंगे। तो जब मोह में अगर कोई व्यक्ति मूवी देख रहा है तो वास्तव में सब कुछ काल्पनिक है। तो इसीलिए जब लोग मूवी देखने जाते हैं तो साथ साथ कुछ खाने के लेके जाते हैं, क्योंकि जो भी चल रहा है सब कुछ काल्पनिक है, कुछ तो असली होना चाहिए चलो कुछ खाते रहते हैं। तो वास्तव में वो सब मोह है, पर जो असलियत है वो भगवान की लीलाएं हैं। तो इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में हमेशा न केवल रामनवमी या जन्माष्टमी या नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर 100-200 साल पहले तक हर गाँव में कोई साधु पुरुष होते थे और वो रामायण महाभारत की कथा करते थे, और लोग उससे सुनकर बड़े संतुष्ट हो जाते थे। भगवान के सौंदर्य और इस भौतिक जगत के सौंदर्य में एक बहुत बड़ा फर्क है। मटेरियल ब्यूटी एजिटेट्स अवर माइंड, स्पिरिचुअल ब्यूटी पैसिफाइज अवर माइंड। भौतिक सौंदर्य है, आध्यात्मिक सौंदर्य है, पर भौतिक सौंदर्य से क्या होता है, हम संतुष्ट नहीं होते हैं, हम और विचलित हो जाते हैं, पर आध्यात्मिक सौंदर्य है भगवान का जो मधुर लीला है उससे हम संतुष्ट हो जाते, शांत हो जाते। तो न केवल भगवान दिव्य लीलाएं करते हैं, पर जब भगवान की सेवा में भक्त लग जाते हैं तो भक्तों को भगवान शक्ति प्रदान करते हैं जिससे कि वो भी दिव्य लीलाएं करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अगर आप आध्यात्मिक बन जाओगे तो फिर आप भौतिक चीजों में गैर जिम्मेदार बन जाओगे। तो प्रभुपाद जी को एक बार ये सवाल पूछा था, प्रभुपाद जी बोले आपको पता नहीं भक्ति क्या है। जो दो भारत में जो महान ग्रंथ है रामायण और महाभारत, उसमें जो महान भक्त है हनुमान और अर्जुन, वो कोई निकम्मे नहीं थे, वो योद्धा थे, और सत्य के कार्य के लिए वो अद्भुत रूप से युद्ध करने के लिए तैयार थे। तो इसीलिए जब हम समझते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ तो हम हमारी सारी जिम्मेदारियाँ बड़े प्रेम से करते, बोझे के रूप में नहीं, भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों करते हैं। तो जो हनुमान जी है, पूरतो मारुतिर्यस्य, भगवान के चरण कमलों में हमेशा विराजमान रहते हैं वो। तो हम जानते हैं कि हनुमान जी का परिचय, हनुमान जी ये प्रभु श्री रामचंद्र के शाश्वत पार्षद है, पर जब उन्होंने रामायण की लीला की तब सीता का विरह जब उन्हें हो गया था तब हनुमान जी का की मुलाकात राम और लक्ष्मण से हुई, जब वे सुग्रीव से मिले, और तब से हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम की ओर स्वाभाविक भक्ति जागृत हो गई। और जब सारे वानर सीता माता के खोज में जाने वाले थे तो प्रभु श्री राम को विश्वास था कि हनुमान ही जरूर ढूंढेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा भी था कि रावण दक्षिण दिशा में गया है। तो उन्होंने हनुमान जी को अपनी एक अंगूठी दी और उनसे कहा जब सीता माता तुम्हें मिलेगी तो ये अंगूठी उन्हें दे देना। और फिर हनुमान जी दौड़ते दौड़ते वो दक्षिण की ओर जा रहे थे। रामायण में विस्तारित वर्णन है क्या क्या रोमांचक घटनाओं है, पर अंत में वे सागर के तट पे पहुंच गए। और जब विशाल सागर देख रहे थे तो सारे वानर शांत हो गए और सब वानर एक दूसरे की ओर देखने लगे, कौन कूदेगा इस सागर के पार। और फिर अंगद ने कहा, ये इतना विशाल है, मैं शायद कूद के वहां पर जा सकता हूं, पर मुझे पता नहीं मुझे शक्ति होगी कि वापस कूद के यहां पे आने के लिए। तो जाम्बवन ने कहा कि मैं जब जवान था तो सारे ब्रह्मांड सारे पृथ्वी को मैं लांग सकता था, पर अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो जाम्बवन ने कहा पर हनुमान जरूर जा सकते हैं। तो हनुमान शांत बैठे थे, नम्र थे, वे अपने शक्ति का प्रधान शक्ति का दर्शाना नहीं चाहते थे। पर जब सारे वानरों ने कहा कि हनुमान आप ही कूदो, तो हनुमान ने तुरंत अपने शरीर को विस्तारित कर लिया। उनको ब्रह्मा जी के द्वारा अनेक आशीर्वाद थे, ब्रह्मा जी और बाकी सब देवताओं के द्वारा, जिससे कि उनमें बहुत सी शक्तियाँ थी। तो उन्होंने वो बाजू में महेंद्र पर्वत था उस पर चढ़ गए और वहाँ से कूद गए वो। और जब वो कूद रहे थे सागर के पार जाने के लिए, तो उनके मन में एक ही विचार था, राम राम नाम ले रहे थे। वो कहते कि अब प्रभु किसी राम का नाम लेकर जो भक्त है वो सारे भाव सागर के पार जाते हैं, तो ये छोटा सा सागर क्या बड़ी बात है, आसानी से चले जाएंगे। फिर चले गए और अनेक हादसे हुए रास्ते में, पर अंत में वो लंका पहुंच गए। जब लंका पहुंचे, बहुत ऐश्वर्यशाली और विशाल नगरी थी वो, और चारों ओर से दीवारों से बंद थी। तो फिर हनुमान ने अपना शरीर एकदम छोटा एक बिल्ली से बना लिया और चुपचाप वो अंदर प्रवेश करने लग गए। और जब अंदर प्रवेश कर रहे थे तो एक राक्षसी आ गई, रुको कौन हो तुम, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो हनुमान बिल्कुल डरे नहीं, बोले तुम कौन हो। तो बोले मैं लंकिनी हूं, मैं इस लंका की रक्षा करती हूं, कोई भी मेरे इजाजत के बिना अंदर नहीं जा सकता है, तुमने जरूरत की है मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। तो वो हनुमान पे प्रहार करने आ गए। हनुमान ने प्रहार किया, हनुमान को कुछ भी नहीं हुआ। फिर हनुमान ने एक प्रहार किया, वो नीचे गिर गिर बेहोश हो गई। कुछ समय के बाद होश में आ गई और बोले मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, बख्श दो आप। और फिर उसने कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि जब एक वानर आकर मुझे हरा देगा तो उसके तुरंत कुछ समय बाद रावण का विध्वंस हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो अभी भविष्यवाणी जरूर सत्य होने वाली है, तुम जो करना चाहते तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। फिर हनुमान जी अंदर चले गए छोटे से रूप में और सारे लंका में ढूंढने लग गए कहाँ मिलेगी सीता। और सब लंका के राक्षसों के बड़े बड़े महल थे और ऐश्वर्य में ऐशो आराम में सब राक्षस जी रहे थे। और अंत में वे रावण के महल तक पहुंचे। जब रावण के महल तक वो पहुंचे तो उन्होंने देखा रात के अंधेरे में वो जा रहे थे। रात के अंधेरे में जब वो जा रहे थे तो रावण अपने बड़े बिस्तर पे सोया हुआ था और उसके बाद में उसके सब दासियां और रानियां अलग अलग जगह पे सो रही थी, उनके बाजू में उनकी पटरानी सो रही थी और बड़े दिव्य सौंदर्य था उस स्त्री का। तो उनको देखकर हनुमान ने सोचा ये जरूर सीता माता है और वो नाचने लग गए। पर बाद में वो चौकन्ने हो गए, बोले सीता माता पतिव्रता स्त्री है, वो कभी अपने आप को रावण के अधीन नहीं होने देगी। फिर सोचने कहाँ होगी सीता माता, और रात भर वो ढूंढ रहे थे, सारा उन्हें ढूंढा कहीं भी मिल नहीं रहे थे और वे हताश हो गए। देख कैसे मैं जाऊँगा वापस, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अंगद को, सुग्रीव को, प्रभु श्री राम को कि मैं लंका पहुँचा, लंका में प्रवेश भी किया पर सीता माता को नहीं ढूंढ पाया। और उनका मन विचार करने लग गया कि शायद जब सागर से लेके जा रहे था रावण तो सीता माता शायद नीचे गिर गई होगी और डूब गई होगी, किसी जानवर ने उन्हें खा लिया होगा, या सब प्रभु श्री राम का विरह सहन न करने कारण वो उन्हें शरीर त्याग दिया होगा, या रावण ने क्रोध में आकर उनका वध कर दिया होगा। क्या करूं मैं, वो इधर उधर ढूंढ रहे थे और कुछ भी पता नहीं चल रहा था, उन बड़े मायूस हो गए थे वो। और वो सोचने लग गए मैं ये दुखद समाचार प्रभु श्री राम को कभी नहीं दे सकता, बेटर दैट आई डाई, मैं यहीं पे अपना शरीर त्याग दूंगा पर मैं हार कर नहीं आऊँगा वापस। तो ये भक्त का डिटर्मिनेशन होता है, भक्त का दृढ़ संकल्प होता है कि भगवान की सेवा के लिए वो जान भी देने के लिए तैयार होता है। प्रभुपाद जी जब 70 की उम्र में अमेरिका गए, जब जा रहे थे तो उनके सब गुरु भाई, उनके सब रिश्तेदार, बोले स्वामी जी आप अभी 69 साल के हो, 70 का साल अभी आ रहा है। प्रभुपाद जी ने अपना 70th बर्थडे 17वां जन्मदिन हवाई जहाज जलदूत पे मनाया, तो सब लोग उन्हें कह रहे थे कि आप क्यों जा रहे हो वृंदावन छोड़ के, वृंदावन में रही वृंदावन में रहो, वृंदावन में अगर शरीर त्यागोगे, नॉट ऑडिबल, इट्स नॉट, सॉरी, अच्छा पीछे सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई दे रहा है आपको, उधर सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दे, क्या, थैंक यू फॉर टेलिंग प्रभुजी, हरे कृष्णा, अभी सुनाई दे रहा है, ओके। तो फिर प्रभुपाद जी को कई लोग बोले आप क्यों जा रहे हो वृंदावन में, रह रहे हो वृंदावन में, अगर आप शरीर त्यागोगे तो भगवत धाम चले जाओगे, और क्या चाहिए आपको। प्रभुपाद जी बोले थे नहीं, मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि आपको जाना है, सारे विश्व भर में प्रचार करना है। तो प्रभुपाद जी बोले भले ही मैं वहाँ जाऊँ और मेरी मृत्यु हो जाएगी तो भी मैं मेरे गुरु की सेवा में शरीर त्यागूंगा, वो महान है, वो प्रभुपाद जी का भाव था। अब प्रभुपाद जी भी सागर पार करके गए, हनुमान जी उड़ के गए, प्रभुपाद जी एक जहाज से गए, पर दोनों का मिशन जो था वो एक ही था। मिशन क्या था? भगवान का आदेश पालन करना। जो जीवात्मा, जैसे सीता को रावण ने जकड़ लिया है, इस जगत के जीवात्माओं को रावण रूपी आसुरी प्रवृत्तियों ने जकड़ लिया है, प्रभुपाद जी उनसे छुड़ाने के लिए पाश्चात्य देशों में गए। और जब हनुमान हताश हो गए थे तब वो एक महल के ऊपर चढ़ गए और इधर उधर देख रहे थे, और जब भक्त के हृदय में इच्छा होती कि मुझे सेवा करनी है तो भगवान उनकी मदद करते हैं। तो तभी अचानक बादलों से चंद्रमा बाहर आई, और चंद्रमा बाहर आई तो तुरंत हनुमान इधर उधर देख रहे थे तो उन्हें देखा कि दूर में एक बगीचा है, वो बगीचा मैंने नहीं ढूंढा, तो तुरंत उस बगीचे की ओर कूदते हुए चले गए। और तब तक प्रातः सुबह हो गए थे, और हर रोज सुबह उठकर रात भर रावण भोग करता था, पर जब भौतिक इंद्रत्ति का स्वभाव ऐसे है कितना भी भोग करे उसे संतुष्टि नहीं मिलती है, तो जैसे सुबह उठ जाता था तो उसको याद आता था कि मुझे अभी सीता का भोग करना है, और तुरंत हर रोज लगभग सुबह उठकर वो सीता की ओर जाता था और सीता को धमकाता था, उसको प्रलोभन देता था सीता माता को। तो जब हनुमान जी वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रावण आया है अपने सारे राक्षसों के साथ और सीता को धमका रहा था। तो हनुमान जी छोटे से रूप में वहाँ पे खड़े थे, और सीता माता ने एक छोटा कुश का घास रख दिया और रावण से कहा कि हे रावण, मैं प्रभु श्री राम के अलावा किसी और के बारे में विचार भी नहीं कर सकती, तुम्हें अगर मेरा शरीर चाहिए तो तुम्हें केवल मेरा मृत शरीर मिलेगा। रावण ये सुनकर क्रोधित हो गया और तो चिल्लाया राक्षसियों को, तुम इसको एक साल के अंदर मनाओ, नहीं तो न केवल मैं इसको पकाकर खाऊंगा, तुम सबको भी पकाकर खाऊंगा, और धमका के चला गया वहां से। और अभी हनुमान जी सोचने लग गए कि कैसे मैं सीता माता को बताऊं। तो ये जब धमकी सुनकर वो सब राक्षसियां डर गई, और फिर वो राक्षस सोचने लगे हम इतना धमका रहे सीता को, सीता नहीं सुन रही है तो क्या करें। तो वो सब राक्षसियां दूर चले गए और एक नया षड्यंत्र बनाने लग गए, कैसे हम सीता माता को बनाएंगे। और यह मौका हनुमान जी ने ले लिया। हनुमान जी सोच रहे थे कि अगर मैं वहां पर प्रकट भी हो जाऊंगा, कि सीता माता कभी हनुमान जी से नहीं मिली थी इसके पहले, फिर वो सोचेगी कि शायद वो सोच सकती है कि ये रावण ही है, रावण का कोई दूत है, तो कैसे वो मुझे पहचानेगी। तो फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की लीलाओं का गुणगान शुरू कर दिया, गीत गाने लग गए, और मधुर वाणी में जब गाने लग गए तो तुरंत सीता माता देखने लग गई, ये रावण के राज्य में कौन राम का गुणगान कर रहा है, और सब और देख रहे थे और उन्होंने एक छोटा सा बंदर देखा। तुरंत सीता माता के मन में संशय आ गया, कौन है यह बंदर, पर वो सुन रहे थे, एक ओर से उनका हृदय आकर्षित हो रहा था प्रभु श्री राम की लीला सुनकर, पर दूसरी ओर से वे सोची थी कौन है ये। पर जैसे वो लीलाओं का गुणगान करते जा रहे थे हनुमान जी, तो ऐसे अनेक अंतरंग लीलाएं थे जो केवल राम और सीता को पता थे और प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को बताई थी। तो जब वो सब लीलाएं बताने लग गए तो फिर सीता माता समझ गए कि ये वास्तव में प्रभु श्री राम का ही दूत है। तो इस तरह से जो भक्त है भक्त को कैसे पहचाना जाता है? उसके रूप से नहीं, वो कैसे दिखता है, किस प्रकार का पोशाक पहनता है। आजकल भारत में ऐसे संकल्पना है, साधु मतलब कौन, कि जो भी इसकी भी लंबी दाढ़ी है, जिसका हाथ ऊपर है, आशीर्वाद आ रहा है, और वो सोचते साधु का एक ही कर्तव्य आशीर्वाद देना, कुछ आप बोलो मत, सिर्फ आशीर्वाद दो। पर भगवद्गीता में जब अर्जुन पूछते हैं आत्म साक्षात्कार व्यक्ति का लक्षण क्या है, वो कहते हैं पहला लक्षण बताते हैं वह उसकी वाणी, किस तरह से बोलता है वो। तो हनुमान जी ने बोले तो तुरंत सुधा माता ये प्रामाणिक भक्त है। फिर हनुमान जी कूद के वहाँ पे आ गए और उन्हें सब कहानी बताई। और जब सीता माता ने बताया कि आप प्रभु श्री राम को बताओ कि एक महीने एक साल के अंदर अगर वो नहीं आए तो मैं उनको नहीं मिलोगे, रावण मुझे मार डालेगा, तो यह सुनकर हनुमान जी बड़े विचलित हो गए। वो बोले कि हे सीता माता, ये तो बहुत बड़ा खतरा है, तो ऐसे करते हैं आप मेरे ऊपर बैठ जाओ और मैं आपको अभी लेके जाता हूँ लंका से बाहर। तो सीता माता बोले कि हे, तुम तो बंदर हो और तुम्हारी बुद्धि भी बंदर जैसी है, तुम इतने छोटे हो, तुम भला मुझे कैसे उठाओगे? तो ये हनुमान जी को ऐसे अपराध के जैसे लगा, अपमान के जैसे लगा, पहली बार किसी उनके शक्ति पे किसी ने संशय किया था। तो तुरंत उन्हें अपना रूप बढ़ाया, रूप बढ़ाया, रूप बढ़ाया, और अशोक वाटिका में सबसे बड़े रूप वृक्ष से बड़े बन गए। और फिर सीता माता से बोले, क्या यह शरीर बड़ा है, आप पर्याप्त बड़ा है आपको उठा कर लेके जाने के लिए? सीता माता हंसने लग गई, बोले कि हमें जानते हो कि तुम ले जा सकते हो मुझे, पर रावण ने रघुवंश का, प्रभु श्री रामचंद्र का अपमान किया है मेरा अपहरण करके, तो रघुकुल का इलाज रखने के लिए उन्हें ही आना चाहिए रावण का वध करने के लिए, और साथ साथ मैंने व्रत लिया है कि मैं किसी और पुरुष को स्पर्श नहीं करूँगी। जब रावण ने मुझे स्पर्श किया तो मैं असह्य थी। तो हनुमान जी बोले, वो मान गए बात सही है। फिर वो बोले, क्या मैं आप राम को कुछ संदेश देना चाहती हूँ? वास्तव में इसके पहले उन्होंने प्रभु श्री राम जो अंगूठी दी थी वो उन्हें दी, तो सीता माता ने देखकर अपने सीने में लगाया और रोने लग गई। और फिर उनको पूछने लग गए कि क्या रामचंद्र भगवान मेरे स्मरण करते हैं या मुझे भूल गए हैं? हनुमान जी बोले, वो आपके स्मरण के अलावा कुछ और करते ही नहीं है, वो केवल आपका ही स्मरण करते हैं और आपके स्मरण में रोते हैं, हवा में ही देखते रहते हैं, सीता सीता कहते रहते हैं और बहुत ही दुखी है। और जब इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र विरह की लीला कर रहे थे तो शिवजी और पार्वती ये देख रहे थे। शिवजी और पार्वती जब देख रहे थे तो पार्वती जानती है कि शिवजी प्रभु श्री राम का जप करते हैं, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो वो सोचने लग गई, ये जो राम है वो अपने पत्नी से कितने आ सकता है, मेरे स्वामी शिवजी मुझसे इतने आ सकते नहीं है, तो फिर वो ऐसे व्यक्ति का क्यों पूजा करते हैं? तो शिवजी समझ गए और वो कहने लग गए कि ये तो मेरे प्रभु की लीला है। पूरम तारावती देखने लगी और प्रभु श्री रामचंद्र चल रहे थे, गिर रहे थे, जमीन पर रेंग रहे थे, रो रहे थे, सीता 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 कह रहे थे। सीता पार्वती सोचते हैं सचमुच लीला ही है ये, तो फिर उन्हें परीक्षा लेने का फैसला किया। तो फिर पार्वती देवी ने सीता का रूप धारण कर लिया और सीता का रूप धारण करके वो उसी रास्ते में खड़े हो गए जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र आ रहे थे। तो प्रभु श्री रामचंद्र रेंगते हुए आ रहे थे और वो पार्वती देवी के रूप चरण कमलों के पास आ गए और वो बिल्कुल सीता के हुए हुए रूप में थी। और फिर जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने हाथ जोड़ा, हे पार्वती माता, क्या आप बता सकते हो मेरी सीता कहाँ है? तो तब पार्वती देवी समझ गई ये लीला है। तो लीला क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान रसराज है। तो जब सीता माता ने सुना कि प्रभु श्री राम मेरे विरह में इतने दुखी है, तो फिर और हनुमान जी को बोले, नाउ आई अगेन हैव गॉट अ पर्पस टू लिव, अभी मेरे जीवन को कुछ मतलब है, रावण कितना भी मुझे धमकाएगा पर मैं मेरे प्रभु के लिए जीवित रहूंगी। फिर हनुमान जी पूछा कि आप कुछ संदेश देना चाहते हो? तो सीता माता ने कहा कि हे प्रभु राम, मैं केवल आपके स्मरण में दिन रात रह रही हूँ, रो रही हूँ, और आपके अलावा मेरा और कोई विचार नहीं है मेरे मन में, मैं आपके इंतज़ार में ही रहूँगी और अगर आप नहीं आओगे तो आपके इंतज़ार में ही मैं मेरा शरीर त्याग दूँगी। हनुमान जी बड़े भाव विभोर हो गए, संदेश दूंगा। और फिर जब ये सेवा हो गई तो अभी वापस जाने वाले थे, तो भक्त का भाव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। तो हनुमान जी को बोला था कि भी आप सीता को ढूंढ लो, सीता को ढूंढ लिया, पर वो थोड़ी एक्स्ट्रा सर्विस कर लेते, थोड़ी एक्स्ट्रा सेवा कर लेते हैं। कह के रावण से युद्ध करना है तो फिर रावण की कितनी शक्ति है वो हम आजमा लेते हैं। तो इसीलिए वो अशोक वाटिका में जो फूल थे, फल थे, वो सब तोड़ के गिराने लग गए और खाने लग गए। तो अशोक वाटिका ये रावण की सबसे प्रिय वाटिका थी, और वहाँ पे बड़े शक्तिशाली राक्षस पहरेदार थे, तो वो सब आक्रमण करने आ गए। तो हनुमान जी ने उसकी जो दरवाज़ा था वो दरवाज़ा तोड़ दिया, दरवाजे का एक जो लोहे का खंभा था वो अपने हाथ में उठा लिया, और उस खंभे से जो भी उन पर आक्रमण करता था उनका वध कर देते थे। फिर ये जानकारी रावण के दरबार में पहुंच गई कि एक बंदर आकर आपके प्रिय अशोक वाटिका का विनाश कर रहा है। तुरंत अपने एक राक्षस नेता को उन्होंने भेज दिया, और हनुमान जी इंतज़ार ही कर रहे थे। और जैसे ही आया उन्होंने अपने लोहा का डंडा घुमाया उसको दबो दिया। फिर उसके रावण ने अपने एक पुत्र अक्ष को भेजा, और अक्ष बड़ा घमासान युद्ध कर रहा था, वो हवा में आगे पीछे जा रहा था, रावण पे हनुमान पे तीर चला रहा था। तो हनुमान जी बड़ी शक्ति से उसके पीछे चले गए, और उसके पीछे से उसके रथ के नीचे से उसको खींच लिया, उसको घुमाया और ज़मीन पर पटक दिया। और जब ये जानकारी मिली तो रावण बहुत क्रुद्ध हो गए और इंद्रजीत खड़े हो गए, मैं जाके इस गर्वित वानर को लेके आऊँगा। और जब वो लेके आने लग गए तब इंद्रजीत अपने तीर छोड़ने लगे, और हनुमान जी हंस रहे थे और उस लोहे से सब तीरों को इधर-उधर बिखोर रहे थे। और काफ़ी समय तक उनका युद्ध चला। इंद्रजीत ने देखा कि ये वानर बड़ा ही शक्तिशाली है, और जितना प्रयास करे सारे उनके अस्त्र निष्फल हो रहे थे। और फिर हनुमान जी ने प्रहार शुरू कर दिया, और कुछ ही समय में ये हतप्रद हो गए, घायल हो गए। फिर इंद्रजीत क्रोधित हो गए, उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाला। हनुमान जी को एक बार मिला था कि ब्रह्मास्त्र के द्वारा वे मारे नहीं जाएंगे, और ब्रह्मास्त्र के द्वारा बंधे जाएंगे पर कुछ ही घंटों के लिए बंधे जाएंगे, और उसके बाद में वे उस बंधन से वो बंधन अपने आप छूट जाएगा। तो जब उन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो हनुमान जी उसका कोई प्रतिकार करने का प्रयास नहीं करते, अपने हाथ जोड़ लिए और ब्रह्मास्त्र ने उनको बंध दिया। और तुरंत राक्षस आ गए और उनको डांटने लग गए, उनको पीटने लगे, उनके भर्त्सना करने लग गए, और उनको खींचते हुए रावण के दरबार में ले जाके जाने लगे। तो जब वो जा रहे थे सारे लंका के वासी उन पे हंस रहे थे, उनका धिक्कार कर रहे थे, पर वो जब और वो सोच रहे थे कि इसका इस वानर का धिक्कार करने के लिए हम सारे लंका में उसको घुमाएंगे। और हनुमान जी उस धिक्कार की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये मेरा काम कर रहे हैं, मुझे लंका देखने थे कहाँ कौन से सैनिक है कहाँ है, वो सब मुझे दिखा रहे तो हनुमान जी बिल्कुल उससे विचलित नहीं हुए। इसे भक्त जब हरिनाम संकीर्तन करने जाते हैं तो कभी कभी लोग हंसते हैं, क्या कर रहे हैं आप, तो लोग हंसे या ना हंसे भक्त क्या कर दे, हरिनाम संकीर्तन करते रहते हैं। तो एक बार इंद्रदमन महाराज बताते हैं कि वो फ्रांस में हरिनाम कर रहे थे, तो एक वृद्ध स्त्री आई, और जब वो हरिनाम कर रहे थे तो प्रभुपाद जी उनको बोले भले ही लोग हरिनाम सुनना नहीं चाहते हैं पर वो जब सुनेंगे तो हरिनाम के ध्वनि से उनका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो ये स्त्री जब देखा तो उसने कान बंद कर लिया, दे आर द डेविल, ये शैतान है, ये शैतान है। और फिर ये भक्त जाके उन्होंने जाकर प्रभुपाद जी को बताया कि ये ऐसी स्थिति कितनी दुर्भाग्यशाली है कि हम हरिनाम ले रहे थे पर वो शैतान कह रहे थे, उसने कान बंद कर लिए। तो प्रभुपाद जी बोले तुम तो शक्तिशाली नौजवान थे, तुमने उसे कान खोलकर उसे कान में हरिनाम देना चाहिए था। तो भाव क्या है कि भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं, पर जीवात्मा जब समझ नहीं पाता है क्या महत्वपूर्ण है, कभी कभी डॉक्टर इंजेक्शन देता है, जबरदस्ती भी देता है, तो वो उद्देश्य उसका उचित होता है। तो अ डिवोटी इज नॉट कंसर्न विद एक्सटर्नल ऑनर और डिसऑनर, ही इज ओनली कंसर्न विद हिज सर्विस टू द लॉर्ड। हनुमान जी ये दिखाते हैं, का इतना अपमान हो रहा था, ग्लानी हो रही थी, वे लोग थूक रहे थे, पर हनुमान जी देख रहे थे मेरा काम चल रहा है, मैं प्रभु श्री राम को सारे लंका के रणयोजना का बगैर बता सकूंगा। और फिर जब रावण के दरबार में पहुंच गए तो
बंदर तुम कौन हो, तुमने मेरी वाटिका का क्यों नाश किया?
बोले कि मैं तो एक बंदर हूं, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खा लिया।
बोले ठीक है रावण, तो पर तुमने मेरे सैनिकों क्यों मारा?
वो मुझे मारने को आया, तो मुझे बचाना चाहिए, मुझे खुद को, इसलिए मैंने उनको मारा।
तुम कौन हो?
बोले मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं और यहां पे आया हूं तुम्हें चेतावनी देने के लिए, अगर तुम सीता को वापस नहीं करोगे तो तुम्हारे और तुम्हारे सारे राक्षस कुल का वध हो जाएगा। जैसे ही राम का नाम सुना रावण क्रुद्ध हो गया, बोले मार डालो इसको। विभीषण बोले अगर वो दूत है तो नैतिक नियमों के अनुसार कभी दूत को मारना नहीं चाहिए, दूत को मारना नहीं चाहिए। तो फिर रावण बड़ा क्रुद्ध था, पर सोचा कि पहले ही सीता को मैंने अपहरण कर लिया, बड़ी बेइज्जती हो गई, दूत कूद को मारूंगा तो और बेइज्जती हो जाएगी, तो फिर नहीं मारूंगा इसको। तो सोचा कि बंदर होते हैं उनको अपनी पूंछ बड़ी प्रिय होती है, तो उसकी पूंछ को जला दो। तो उसके पहले क्या हुआ था, जब उन्हें बताया है कि मैं राम दूत हूं और मैं आपको राम का संदेश देने के लिए आया हूं, तो अगर कोई दूत आया है तो वास्तव में दूत को एक आसन प्रदान करना चाहिए, पर रावण ने कोई आसन नहीं प्रदान किया, उल्टे वो राम के बदनामी करने लग गए। तो हनुमान बोले है कि मैं ऐसे समय तुम्हारा वध कर सकता हूं, पर वो श्रेय मैं मेरे प्रभु को देना चाहता हूं, पर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तो उन्होंने अपनी पूंछ को बढ़ा ली और उतना अपने पूंछ पे बैठे तो उनका आसन रावण के ऊपर हो गया और रावण को उनके ऊपर देखना पड़ रहा था। तो उसकी पूंछ को जला दो बोले, और पूंछ को जलाया लग गए, उन्होंने तेल लगाया और सब उस पर रुई लगाई और उसको जलाया लग गए। तो हनुमान जी राम 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 बोल के वो जो जलन थी उसको सहन करने के लिए तैयार थे, पर ये सब जानकारी सीता माता के पास जा रही थी। और जो सीता माता ने जब सुना कि हनुमान जी की पूंछ को जलाया जा रहा है, तुरंत वो प्रार्थना कर रही लगे, हे अग्निदेव, यदि आप मैंने जो भी भक्ति की है, मैंने जो भी पुण्य किया है, इससे यदि मैंने आपको कभी प्रसन्न किया है तो कृपया आप हनुमान जी के जब पूंछ को जलाओगे तो उससे उनको बिल्कुल दर्द न होने दो। जब ये अग्नि आएगी तो अग्नि पर उनको गर्म न लगे पर शीतल लगे। तो हनुमान जी जला रहे थे, हनुमान जी पूंछ जल रही थी और हनुमान जी सहन करने के तैयार थे, तो पहले उनको थोड़ी गर्मी लगी और अचानक एकदम शीतल हो गया। तो आश्चर्य जगह तो पीछे देखे, पूछे पूरी पूछ जल रही है पर उनको बिल्कुल वेदना नहीं हो रही है। और फिर समझ गए कि ये सीता माता के प्रार्थनाओं का परिणाम है। तो वास्तव में जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो वैष्णव भक्त हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं से हमें संरक्षण मिलता है। प्रभुपाद जी को एक बार एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी क्या आप आपके सब शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते हैं? प्रभुपाद जी बोले, यस आई लव एवरी वन इक्वली, बट इफ समवन कम्स फॉरवर्ड टू रेंडर सर्विस आई रेसिप्रोकेट। मैं सबसे समान प्रेम करता हूँ, पर कोई सेवा करने के लिए आगे आता है तो मैं उसे स्वाभाविक रूप से अधिक प्रेम करता हूँ। जैसे पिता होते हैं सब पुत्रों से प्रेम करते हैं, पर कोई पुत्र अगर पिता के बिजनेस में उनको मदद करता है, घर की जिम्मेदारी में मदद करता है, तो स्वाभाविक रूप से पिता उसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो समस्याएं जरूर आएगी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कर सकते जिसमें समस्याएं नहीं आएगी। अगर हम प्रचार करते हैं, ग्रंथ वितरण करते हैं, लोगों को कार्यक्रम के लिए बुलाते हैं, जरूर समस्या आएगी, पर वैष्णव के प्रार्थनाओं के कारण वो समस्याओं से हम समस्त नहीं होंगे। द प्रॉब्लम्स वोंट प्रॉब्लमेटाइज अस। और फिर जब उनकी पूरी पूछ जल गई तब तक वो ब्रह्मास्त्र की शक्ति खत्म हो गई थी और जय श्री राम बोलकर वो कूद पड़े और महल की जो दीवार थी वो तोड़कर बाहर आ गए और वो जा रहे थे सागर में उस अग्नि को बुझाने के लिए। बुझाने के जा रहे थे, जब वो जा रहे थे तो क्या हो गया, उनके अग्नि, उनके जो पूछ की अग्नि थी वो इतनी भीषण थी कि वो रावण के वो जो महल था वो जल गया। और वो जल गया तो हनुमान जी को आइडिया, ये अच्छा काम है। तो उन्होंने तुरंत वो एक महल से दूसरे महल पे, दूसरे महल से तीसरे महल पे, तीसरे महल से चौथे महल पे जल के सब लंका को जलाने लग गए। तो कोई भौतिक दृष्टि से लगेगा ये विनाश कर रहे हैं, पर वास्तव में जो व्यक्ति गलत कार्यों में लगा है तो उसके रिसोर्सेस का, उसके सामग्री का विनाश करने से लोगों को विनाश से बचाया जा सकता है। तो सारे लंका को जला दिया और फिर जलाकर वे नदी में, सागर में कूद गए और अपने पूछ को उन्होंने बुझा दिया अग्नि को, और फिर तुरंत वो पहाड़ पे चढ़ गए और वहाँ से कूद गए। और कूद कर जब जा रहे थे वे, और वो बड़े आनंदित थे और जोर जोर से जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम चिल्ला रहे थे। और अंगद ने कहा था कि हनुमान, जब तुम जाओगे लंका में तो हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, और न केवल प्रार्थना करेंगे, हम तुम्हारे लिए तपस्या करेंगे। जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम एक पैर पे योगिक मुद्रा में खड़े रहकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर राम पे ध्यान करते हुए तुम्हारे यश के लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये एक भक्त का भाव होना चाहिए। अगर किसी भक्त को कोई विशेष सेवा मिलती है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे क्यों सेवा मिली है, मुझे क्यों नहीं मिली। नहीं, ऐसे नहीं है कि उसे सेवा मिली है और मुझे नहीं मिली है। ये मेरी सेवा नहीं है, उनकी सेवा नहीं है, भगवान की सेवा है। हम सब भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो हनुमान जी भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो बाकी वानर उनके यश के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और जब हनुमान जी वापस आए तो फिर वो आ रहे थे तो उनकी जो जय श्री राम की विजय घोष थी वह सुनकर ही सारे वानर आनंदित हो गए और समझ गए कि हनुमान जी यशस्वी हो गए। और वो देख रहे थे क्षितिज की ओर, कब हनुमान जी दिखेगा। हनुमान जी का विशाल रूप तेज से आते हुए उन्हें दिखा, और जब उन्हें देखा तो हनुमान जी कूदते हुए आए, कूदे जमीन पर आ गए, और फिर उन्होंने सब उनको चारों ओर से घेर लिया और उनको फल दिए खाने के लिए। उनको पूछा क्या हुआ, तो हनुमान जी ने अंगद के हाथ पकड़े और सब वृत्तांत बताया। और फिर प्रभु श्री राम के पास गए, और जब वे जब राम के पास गए तो हनुमान जी ने संदेश दिया, बड़ा सुंदर था। संस्कृत में जो बताया उन्होंने वो क्या बताया, मिल गई सीता। वो बोल सकते थे सीता मिल गई, पर वो बोले मिल गई सीता। क्यों बोले ऐसे, क्योंकि वो जानते थे कि प्रभु श्री राम इतनी चिंता में है कि अगर मैं सीता ये शब्द बोलूंगा तो जब तक मैं मिल गई बोलूंगा तब तक प्रभु श्री राम को चिंता और बढ़ेगी। तो वो जानते हैं कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूं, सीता के बारे में बोल रहा हूं, तो इसलिए उन्हें बोला मिल गई सीता। तो ये एक भक्त की संवेदनशीलता होती है कि भगवद्गीता में बताया गया है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम जयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वान्मयम तप उच्यते, कि इस तरह से हम शब्द बोलने चाहिए, अनुद्वेग करम वाक्यम, दूसरों को चिंताओं में न डाले, दूसरों की चिंताओं से उन्हें मुक्त करे, उसके लिए चापलूसी नहीं करनी है। सत्यम प्रिय हितम चे, सत्यम बोलना चाहिए, सत्य इस तरह से बोलना चाहिए कि प्रिय भावना से बोलना चाहिए। पर आजकल के संस्कृति या विकृति ऐसी है कि लोग एक दूसरे को टॉन्ट मारते हैं और इतना अच्छा टॉन्ट मारते हैं, मतलब जितना दूसरे को उस टॉन्ट से दर्द होगा वो सोचते हैं मैं उतना बुद्धिमान हूँ। ये आसुरी बुद्धि है। दैवी बुद्धि क्या है, जो भी बोलना है कितने मधुरता से मैं बोल सकता हूँ। चाणक्य पंडित कहते हैं अगर आपको कोई एक चीज करनी है जिससे आप सारे विश्व पर जीतना चाहते हो तो वो एक चीज है, स्पीक स्वीटली, मधुरता से बोलो। तो मधुरता से हम सत्य बोलना, सत्य भी बोलना है तो कटु सत्य नहीं बोलना, मधुरता से सत्य बोलना है। तो फिर प्रभु श्री राम ने सारा वर्णन सुनाने को कहा। जब हनुमान सारा वर्णन सुना और जब उन्होंने सीता का संदेश सुना तो राम सीता के खोज में, विचार में खो गए। और कुछ समय के बाद बाह्य चेतना में जब आए तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुमने जो सेवा की है ये अतुलनीय है, ये सेवा और कोई नहीं कर सकता था, और मैं इस सेवा के लिए तुमसे इतना कृतज्ञ हूँ, पर मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं मेरी कह सकता हूँ, जो आपको दे सकता हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ है मेरी जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वो है मेरा आलिंगन। और उन्होंने हनुमान जी को आलिंगन कर दिया है। ये दिस द परफेक्शन ऑफ लाइफ फॉर अ डिवोटी, ये एक भक्त के जीवन की परिपूर्णता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कीते। धन नहीं चाहिए मुझे, सुंदर स्त्रियां नहीं चाहिए मुझे, अनुयायी नहीं चाहिए मुझे, जन्म मुक्ति के चक्कर से मुक्ति भी नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, केवल आपके हितों की भक्ति चाहिए। बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है कि जब जो जीवात्मा सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करके जब भगवत धाम लौटता है, गोलोक वृंदावन जाता है, तो जब वो पहुंचता है गोलोक वृंदावन, कृष्ण उसे देखते हैं, इस गोपी का नाम है स्वरूप। स्वरूप तुम कहां थे, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कृष्ण दौड़ते हुए उसके घर आते हैं और कृष्ण इतने आनंद जाते हैं। स्वरूप कौन है? वो जीवात्मा है जो भौतिक जगत में भ्रमण करके भगवत धाम पहुंचा है। स्वरूप हम सबका प्रतिनिधित्व करता है। स्वरूप पहुंचता है भगवत धाम तो भगवान, तुम कितने समय से गए थे, मैं तो हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और भगवान दौड़ते हुए आते हैं उनकी ओर, और दौड़ते हुए आते हैं और इतने आनंद होते भगवान के, भगवान बेहोश हो जाते हैं। कृष्णा लूजेस हिज कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्णा अपने कृष्ण भावना खो जाते हैं उनके प्रेम के कारण। और फिर वो स्वरूप के सामने आते हैं और स्वरूप से कहते हैं कि तुम्हें सारे पृथ्वी का ऐश्वर्य मिल सकता था, तुम पृथ्वी में राजा बन सकते थे, शहंशाह बन सकते थे, तुम स्वर्ग के इंद्र बन सकते थे, तुम ब्रह्मा बन सकते थे, तुम सब योगिक सिद्धियां प्राप्त कर सकते, पर उन सबको तुमने ठुकरा दिया। किस लिए? सिर्फ मेरे लिए। मैं इतना कृतज्ञ हूँ, क्या दे सकता हूँ मैं तुम्हें आलिंगन देता हूँ। तो ये हमारे जीवन की परिपूर्णता है। जब हम भगवान की जिंदगी भर सेवा करते हैं तो भगवान हमें स्वागत करने के लिए भगवत धाम में रहेंगे और हमें आलिंगन करेंगे। और फिर जब हनुमान जी सब योजना बनाई वानरों ने, और वे पुनः लंका की ओर चल गए, और फिर उन्होंने सेतु बनाया, सेतु पार करके युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध शुरू हो गया तब अनेक प्रकार से रावण ने षड्यंत्र करके वानरों और राम, ऋषि राम और लक्ष्मण को हराने का प्रयास किया। तो इंद्रजीत ने एक बार वो अदृश्य हो गया और उन्हें राम और लक्ष्मण को बेहोश कर दिया। तो आप जानते हैं तभी हनुमान जी ने पर्वत लेके आ गए। तो कभी लोग कहते हैं क्या कैसी कल्पना है ये, कोई पर्वत कैसे उठा सकता है। तो वास्तव में ये हम समझते नहीं है। ऐसे एक नास्तिक कहता है कि कृष्ण ने पर्वत उठाया तो कृष्णा को वो गोवर्धन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे मिला, गोवर्धन कैसे उठाया उन्होंने। तो उसको पता नहीं है कि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटी, कृष्णा इज द कॉज ऑफ ग्रेविटी। सारे जो प्रकृति के नियम है वो कृष्ण से आते हैं। तो भगवान चाहेंगे तो पर्वत बहुत सारा उसका वजन होगा, और भगवान चाहेंगे तो उसका सारा वजन चला जाएगा। भगवान चाहेंगे तो उनके एक भक्त को वो बड़ा पर्वत उठाने की भी शक्ति दे सकते हैं। और ये सिंपल लॉजिक है कि सारे बड़े बड़े ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में बड़े बड़े ग्रह है, वो कैसे तैर रहे हैं। वैज्ञानिक कहेंगे वो ग्रेविटी से तैर रहे हैं, पर ग्रेविटी कहाँ से आई है वो पता नहीं, ग्रेविटी कहाँ से आई है, वो ग्रेविटी है इतना ही पता है। तो ज़रूर ये एक स्तर पर एक्सप्लेनेशन है। ऐसे एक बार अमेरिका में सर्वे हुआ था कि वो स्कूल के विद्यार्थियों को उन्होंने पूछा कि दूध कहाँ से आता है, और 100% विद्यार्थियों ने जवाब दिया सुपरमार्केट से। किसी को पता ही नहीं कि दूध कहाँ से आता है, गाय से आता है। तो हाँ, एक तरह से सत्य है कि दूध सुपरमार्केट से आ रहा है, सुपरमार्केट दूध कहाँ से आ रहा है, गाय से आ रहा है। तो जो विज्ञान है इट डज, जो अल्टीमेट कॉज तक नहीं जाता है, एक स्तर के कॉज तक जाता, एक स्तर के कारण तक जाता है वो। ऐसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जब कम्युनिस्ट लोग नास्तिकवाद का प्रचार करने चाहते थे तो रशिया में जो क्रिश्चियन लोग थे तो वो चर्च में जा रहे थे और चर्च में आके प्रार्थना करते थे, ओ फादर दा वाट इन हेवन हैलोड बी दाय नेम, गिव अस आवर डेली ब्रेड। वो भगवान से अन्न की प्रार्थना करने जाते थे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में भगवान से हमें अन्न की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जारे जानवर है वो कोई प्रार्थना ही करते हैं उसके बिना उनको उनका अन्न मिल जाता है। तो भगवान से प्रार्थना करनी है तो वास्तव में हमें भक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, वह दिव्य चीज़ है। पर फिर भी जब वो जाते थे वहाँ पे तो ये कम्युनिस्ट लोग वहाँ पे आते थे, क्या क्यों जा रहे हो तुम, बोले हम ब्रेड के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। ठीक है जाओ, जाते थे और जब वापस आते थे वहाँ और बोलते तुम्हें ब्रेड मिला नहीं मिला तो अभी हमें प्रार्थना करो, तो बोले कम्युनिस्ट हमें आप ब्रेड दे दो, और वो ट्रक भर के ब्रेड लेके आते थे और बोलते थे ले लो ब्रेड, अभी देखो कौन बड़ा है, बोले आप बड़े हैं आपने ब्रेड दिया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कम बुद्धि का लक्षण है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने चर्च के अंदर जाकर भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना की भगवान से कि हे ब्रेड दो,
और वो भगवान जैसे ही बाहर आ गए, भगवान ने कम्युनिस्ट के माध्यम से उनको ब्रेड दिया। वो कम्युनिस्ट के पास ब्रेड आया कहाँ से? उन्होंने कोई ब्रेड नहीं बनाया, वो निसर्ग में बनाया। और निसर्ग में कैसे बना है? भगवान ने बनाया। इतनी भी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, कोई भी एक ऐसी फैक्ट्री नहीं जो अन्न बना सकती है। सारा अन्न खेती में ही बनता है, फलों और फूलों में ही बनता है। तो हमें देखना चाहिए कि अंतिम कॉज क्या है, अंतिम कारण क्या है। तो हनुमान जी पूरा पहाड़ लेके आ गए, और फिर बाद में एक के बाद सब असुरों का वध हो रहा था। तो फिर रावण ने कहा कि अभी तो बड़ा खतरे का समय आ गया है, तो मुझे मेरे भाई, एक और भाई था उनका मही रावण नाम का, वो मही रावण की मुझे मदद लेनी है। तो रावण ने महीपुरी से मही रावण को बुलाया, और मही रावण बहुत शक्तिशाली था, और उसने बताया क्या हुआ है। तो मही रावण बोला कोई बात नहीं है, मैं एक ऐसा यज्ञ वैसे ही कर रहा था जिसमें मैंने 99 क्षत्रियों को मारा, क्षत्रिय राजाओं को बलि में चढ़ाया है, राक्षस इस प्रकार का यज्ञ करते हैं। बोले कि मुझे एक और राजा चाहिए था, पर तुमने तो मुझे दो दे दिए, राम और लक्ष्मण दोनों। चिंता मत करो, आज रात को 12 बजे के पहले वो दोनों बलि के बकरे बन जाएंगे, तुम शांति से रह सकते हो। और विभीषण को तुरंत जानकारी मिल गई। तो विभीषण को जानकारी मिल गई तो विभीषण ने बोला कि मही रावण बहुत जादू करता है, आपको मैं बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। तो फिर उन्होंने, हनुमान जी ने एक विशेष योजना बनाई। हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ को विस्तारित कर दिया और अपने पूंछ से एक पहाड़ बना लिया, और जो पहाड़ बना लिया, पहाड़ ने एक फोर्ट, एक किला बना लिया, और उस किले के अंदर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण रहने लगे, और चारों ओर से बंद था वो, और उसमें जाने का एक ही मार्ग था कि हनुमान जी के कान से अंदर प्रवेश करना, और उनके एलिमेंट्री कैनाल, उनके पेट से जाकर पीछे उनके पूंछ में जाना, और पूंछ में एक छोटा सा छेद था, उस छेद से वो उस किले के अंदर प्रवेश कर सकते थे। तो सोचा अभी कोई भी अंदर नहीं जाएगा, और उसके बावजूद विभीषण भी चारों ओर पहरा दे रहा था। और विभीषण आया और बोला कि मैं भी पहरा दे रहा हूँ, तुम बड़े चौकन्ने रहो, जरूर चौकन्ने रहूँगा। और कुछ समय बाद विभीषण आ गए, हनुमान जी बोले तुम इतना जल्दी वापस आ गए? तो मैं चिंता थी मुझे, मैं जाके देखता हूँ सब कुछ ठीक है ना, और वो कान से अंदर प्रवेश कर गए। हनुमान जी इंतजार कर रहे थे, और तुरंत विभीषण वापस आ गए। अरे तुम अंदर गए थे, तुम बाहर कैसे आ गए? अंदर गया था मैं तो अभी चौकन, मैं तो पहरा देने के लिए गया था। क्या? तुरंत हनुमान जी समझ गए दाल में कुछ काला है, और उन्होंने अंदर देखा तो श्री राम और लक्ष्मण गायब थे। तो मही रावण विभीषण के रूप में आया था, और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को उन्होंने अपहरित करके ले गया। और वो मही रावण इतना बड़ा उसमें योगिक शक्ति थी कि उसने, अगर कोई भले ही वो छेद को स्पर्श न करे, हनुमान जी के कान को स्पर्श न करे, पर वहाँ से अगर सांस भी निकली तो हनुमान जी समझ जाते थे। तो उसने ऐसी योगी सिद्धि थी उसके पास कि उन्होंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को ऐसी निद्रा में डाल दिया कि उनकी सांस भी बंद हो गई, और खुद योगी सिद्धि से उसने अपनी सांस रोक दी, और वहाँ से वो गायब हो गया, फरार हो गया। और तो हनुमान जी बड़े विचलित हो गए, कहाँ गया वो महीपुरी में गया होगा। तो महीपुरी कहाँ है? बोले बहुत दूर नीचे के लोकों में है। तो बोले मैं तुरंत जाऊँगा वहाँ पर। फिर उन्होंने बताया कि वहाँ पर जब जाओगे तो उसका जो महीपुरी राज्य है वो एक कमल के समान है, विशाल कमल के समान है, और वो पूरा बंद रहता है, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो एक ध्वनि है जो आपको बतानी है, जब वो ध्वनि बोलोगे तो फिर वो खुल जाएगा। तो फिर हनुमान जी तुरंत चले गए, और बहुत इस जाते हुए जब वहाँ पर पहुँच गए महीपुरी में, और फिर वो इतनी चिंता में थे प्रभु श्री राम के बारे में, पहुँच गए वो बोले वो ध्वनि क्या है, मैं भूल गया। तो हमें जब पासवर्ड भूल जाते हैं हम कंप्यूटर में कभी कभी, तो हनुमान जी को भी प्रॉब्लम था, क्या करें। और फिर वो प्रार्थना करने लगे, तो तभी वायु वादे वहाँ पे आ गए, बोले क्या प्रॉब्लम है? उन्हें बताया, अरे चिंता मत करो, जब आप ध्वनि बोलते हैं तो ध्वनि से जो कार्य होता है वो मैं वायु ही करता हूँ, तो मैं वो कार्य कर दूंगा। और फिर उन्होंने उस कमल को खोल दिया और तुरंत अंदर चले गए। जब अंदर चले गए तो फिर उन्होंने देखा कि एक विशाल नगरी थी वहाँ पे, और अनेक दीवारें थे, और हर एक दीवार पे बहुत से सैनिक थे जो रक्षण कर रहे थे। तो जब हनुमान जी सोच रहे थे कि कैसे अभी इसमें नगरी में प्रवेश करना है, तभी कोई आवाज़ सुनाई दी, हनुमान हनुमान तुम मुझे इस्तेमाल करो। तो वहीं उधर देखा तो वहाँ पे उन्हें एक विशाल वृक्ष देखा,
और ऋषि ने कहा कि मैं वास्तव में एक देव था, पर मैंने एक ऋषि के प्रति अपराध किया, इसीलिए मुझे इस वृक्ष का शरीर मिला है, और तुम मेरा इस्तेमाल करोगे तो प्रभु श्री राम की सेवा में, तो उससे मैं शुद्ध हो जाऊंगा और मुझे वापस मेरा शरीर मिल जाएगा। तुरंत उन्हें वो वृक्ष उठा लिया, और फिर वे, वो इतना बड़ा वृक्ष था, एक मारे तो सारी दीवार गिर गई, दूसरी दीवार गिर गई, तीसरी दीवार गिर गई, ऐसे करते करते वो सातवें दीवार तक पहुँच गए। और जब वहाँ पर पहुँच गए तो वो बहुत ही बड़ी दीवार थी, और वहाँ पे ये महिरावण, ये उसकी वैज्ञानिक जैसी बुद्धि थी, तो उस दीवार में एक ही दरवाज़ा था, और इस दरवाजे में उसने एक स्पेशल प्रकार का मीटर रखा था, वो था महिरावण हेट मीटर, महिरावण के नफरत का मीटर, और जब कोई भी व्यक्ति उसमें बाहर आएगा और अंदर जाएगा तो वो दिखाएगा कि उसमें कितनी नफरत है, कितना प्रेम है। तो किसी में महिरावण कहते प्रेम नहीं था, तो पर नफरत कितना